जय धवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 14
ओम नमः सिद्धेय
ओम नमः सिद्धेय
ओम नमः
सिद्धेय
ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्चायानं नमो लोए सवसाओनं
निथव्यच उत्थानं
पनट्टकं मत्तदुत्तर्युचेत्थं ओच्छामीच उत्थानं जिन परमे
श्री वीरसेन आचार्य रचित यह जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गुंदर भट्टार तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक में अभी ये जो दूसरा अर्थाधिकार है चौथान नाम का, चतुस्थान नाम का अर्थाधिकार यहाँ शुरू हो जाता है और हम पृष्ठ संख्या 158 पर आ गए। 158 यहाँ अनुभाग की अपेक्षा जो चार चार स्थान बताए हैं, क्रोध के चार स्थान, मान के, माया के और लोक के, तो यहाँ जो कषायन की जाति है वो अलग। जब कहेंगे कषायन की जाति कौन सी, तो कहेंगे अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोग। और यहाँ उस जाति की चर्चा किए बिना सामान्य जो है क्रोध मान माया लोग, हरेक के चार चार भेद बताए हैं, जिसमें तीव्रतर तीव्र मंद मंदतर, ये चार भेद हरेक में बताए। क्रोध के क्या नाम है याद है आपको? क्रोध के राज शब्द लगाया था और सदृश शब्द नगर आज
नगर आज
इसको हमने शिला भेद कहा था। हाँ। नगर राज्य, हाँ, फिर पृथ्वी राजी सदृश, फिर
बालुका
राजी सदृश, उदक यानी पानी, जल, जिसको हम जल रेखा कहेंगे। हमने जो सीखा था शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, एक क्रोध के नाम हुए।
हाँ।
फिर मान में, हाँ
नहीं, बांस के जड़ के सदृश,
वो बांस का वो है, वो मायामय।
हाँ, मायामय
तो आप मान की बात कर रहे हैं उसको। हाँ, यहाँ शिला स्तंभ कहा, शिला स्तंभ। फिर अस्थि, दारू और लता, तीन नाम तो वैसे ही थे। हमने पहले वो कुछ, हाँ, लता वेद के समान वगैरह ऐसे वहाँ नाम अलग थे समय ज्ञान चलती का। माया में
बांस के जड़ के सदृश,
बांस की जड़, बांस नहीं, बांस की जड़, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती,
स्प्रिंग
है।
हाँ। मेरे के सिंह,
मेरे के सिंह। फिर तीसरा
गौमूत्र,
और चौथा, और चौथा उसका नाम कुछ अलग था,
अवलेखनी।
अवलेखनी। फिर लोग के चार देखे थे,
कृमिराग
में तो हमने उसका पहले तो हम किरमिजी रंग इतना ही जानते थे, कल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, रेशम का जो जिस, हाँ, जिस वर्ण का अनाज खाते उस वर्ण का वो धागा निकालते रहते हैं, वो उसका मल रूप है, तो उसमें से जो धागे सूत्र बनते हैं उससे वस्त्र बुना जाता है और वो उसी कलर का है, वो कलर एकदम कभी जाएगा नहीं, उसको उबालो कुछ करो, वहाँ तो बताया कि उसके बस में भी हो जाए तो फिर वो कलर को नहीं छोड़ेगा, तो उसको कहेंगे कृमिराग। कृमि है का कृमि, कृमिराग। दूसरा कौन सा देखा था?
अक्षमल।
अक्षमल उसको चक्रमल भी कहा था ना, अक्षमल।
हाँ।
यानी वो गाड़ियों के पहियों में वो सेंटर में डालते हैं, मराठी में उसको मंगन कहते हैं,
एक्सल
के वो अंदर जो वो काला काला जो है वो कपड़े पर लग गया तो निकलता नहीं है,
ग्रीस,
वो वही ग्रीस आजकल वो शटर में भी डालते हैं, शटर ऊपर नीचे करते हैं तो काला हो जाता है और उसके दाग कहीं लग जाए तो निकलते नहीं। तो ऐसा यहाँ लोभ का परिणाम का समझ में। फिर तीसरा नंबर का औंशुले यानी पैर में लगी हुई धूल, इसको तनुमल भी कहा था और हरिद्रावत ये हमने देखे है चार चार नाम हरेक के। हम आए अभी 158 पर आ गए। हमने सूत्र पढ़ा था, सूत्र गाथा भी पढ़ी थी और उसका जो हिंदी अर्थ है सूत्र का वो पढ़ा था। वो सूत्र का अर्थ पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं लता के समान मान में, लता के समान यानी उसमें बिल्कुल स्टिफनेस नहीं के बराबर है, वैसा वहाँ मंद है। तो लता के समान मान में उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा, ये जो है अनुभाव को बताने वाले वर्ग वर्गणा और स्पर्धक होते हैं। यहाँ स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे की वर्गणा का अर्थ होता है मिनिमम अनुभाग वाले। वर्गणा का ही अर्थ उसमें जितने परमाणु है उस एक वर्गणा के परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या समान है, उसी को हमने वर्गणा नाम दिया। क्योंकि है तो ये कर्म परमाणु, स्थिति की अपेक्षा हम एक के ऊपर एक रचना करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्थिति रचना, उसको कहेंगे एक, को कहेंगे निषेक। और यहाँ अनुभाग की अपेक्षा एक एक बढ़ते हुए अनुभाग हम ऊपर ऊपर लिखते जाएंगे उसको कहेंगे वर्गणा। वहां कहा था निषेक और यहाँ कहते हैं वर्गणा। अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। जहां से पहली वर्गणा से दो गुना वर्गणा हो जाती है अनुभाग हो जाता है, वहां से दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, इसे स्पर्धक भी अनंत हो। तो यह कहते हैं नीचे वाली पहली वर्गणा और सबसे लास्ट वाले अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा। तो इसमें अनुभाग का प्रोपोर्शन कैसे क्या होगा?
नहीं, प्रदेश की अपेक्षा,
प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणाहीन बताया। क्योंकि नीचे प्रदेश ज्यादा होते हैं, एक एक चय से घटते चले जाते हैं, आधे हो गए, फिर आधे के आधे हो गए, आधे के आधे हो गए, आधे के आधे हो गए। तो जितनी गुणहानियाँ हैं उतने आधे आधे होते चले जाएंगे। तो अनंत गुणहानियाँ तो अनंत विभाग को माना जाता है।
ये लता की बात है, लता के सब
लता के स्पर्धक में बात चल रही है।
हाँ।
लता के मिनिमम से लता के मैक्सिमम तक की बात की यहाँ पर। किंतु अनुभाग की अपेक्षा क्या होगा? जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा नियम से अनंत गुणी अधिक होते हैं। क्योंकि दो गुना, तीन गुना, चार गुना अनंत स्पर्धक है तो अनंत गुना होते हैं। यानी अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गणा भी अनंत गुणा है तो अंतिम वर्गणा भी अनंत गुणा के हैं। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लिया, अभी आगे पढ़ेंगे। यह सूत्र गाथा मान के लता समान स्थान को ग्रहण कर स्वस्थान अल्पभूतव की परीक्षा करने के लिए लाई है। ये क्या बताया था? देखो अभी ये कौन सी पृच्छा की थी, पहले वाला सूत्र देख लो, फिर 157 नंबर पेज पर वो सूत्र फिर पढ़ेंगे। चारों कषायों के, क्रोधमान माया लोक के, इन 16 स्थानों में, अभी जो हमने नाम देखे ना हरेक के वो 16 स्थान कहलाए। इन 16 स्थानों में स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा कौन सा स्थान किस स्थान से अधिक होता है और कौन स्थान किस स्थान से हीन होता है, ये पूछा गया है। यानी इसका अर्थ क्या है? एक का दूसरे के साथ सन्निकर्ष कहले करके बताएंगे। तो यहाँ कहेंगे कि पहले तो बताया था पढ़ती में, फिर आपको याद आएगा हमने क्या पढ़ा था।
ये स्वस्थान की बात है कि परस्थान से ये सन्निकर्ष?
अभी मैं ये पढ़ रही हूँ उसको सुनो अभी।
हाँ।
फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। यानी हम कल क्या पढ़ा था उसको देख के फिर, अभी हमने ये बात देखी थी कि स्थिति की अपेक्षा उसमें कोई फर्क नहीं होगा, उसको फिर पढ़ेंगे। समानांतर कहे गए 16 स्थानों में विभक्त इन स्थानों के स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा अल्पभूतव का कथन करने के लिए इस सूत्र का आरंभ करते हैं। ये तो बात इस सूत्र में आने वाली है। एदेशिम थानानम, उसका अर्थ इन समानांतर पूर्व गए हुए स्थानों के, चतुष्क कषाय को इसका अर्थ है चार कषायों में से प्रत्येक के चार भेदों में विभक्त होने के कारण सोलह संख्या रूप ये इसका अर्थ है। आगे गाथा में क्या कहा था, कम केन होई अहियम, कौन स्थान किस स्थान के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त हुआ। सन्निकर्ष की बात लिखी, एक का दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा हीन होता है या अधिक होता है, इस प्रकार यहाँ पृच्छा का निर्देश किया गया। प्रश्न क्या है वो पहले समझना योग्य। उनमें से अभी स्थिति की बात करेंगे, स्थिति की अपेक्षा सभी स्थानों के हीन अधिक पने का अनुसंधान नहीं है, क्योंकि सभी स्थिति विशेषों में अपने अपने चारों स्थान बिना विशेषता के पाए जाते हैं। इसका अर्थ है जितनी कोई स्थिति बंदी है, जितने निषेक बने हैं, उस प्रत्येक निषेक में सभी अनुभाग वाले
चारों स्थान,
हाँ चारों स्थान वाले परमाणु पाए गए। हम वहाँ देखे ना एक कितने स्थिति वाले आबादा के ऊपर पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक और अंतिम निषेक, जो कोई अभी कषायण की बात है तो 40 कोड़ा कोड़ी वाला निषेक, तो उसमें एक स्थान वाला निषेक कहाँ पड़ा होगा और चतुर्थ स्थान वाला कहाँ हुआ, तो कहते इससे कोई भेद नहीं है, सभी वे सभी है। देखो फिर पढ़ेंगे इसका यथा तीसरी लाइन, कषायण की 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपन स्थिति को बांधने वाले जीव के अंतिम स्थिति में एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय विशेषता को लिए देशघाती और सर्वघाती सब प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तथा आबादा के बाद की समानांतर जघन्य स्थिति में भी पहला निषेक, जघन्य स्थिति ने पहला निषेक, उसमें भी वे अविशेष रूप से संभव है, यानी सर्वत्र वो संभव है ये बात बता रहे। इस कारण से यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शुरू शुरू के अनुभाग कम अनुभाग वाले हैं और लास्ट में ज़्यादा अनुभाग वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थिति में, स्थिति में
प्रत्येक स्थिति में,
हाँ। प्रत्येक स्थिति में सभी अनुभाग वाले परमाणु
पाए जाते हैं,
इतनी बात। शुरू में हमने पढ़ा था या किसी ने बताया था, तो पहले जाने वाले मंद अनुभाग वाले और बाद में जो रहते हैं वो तीव्र अनुभाग वाले, ऐसा कहीं सुना था हमने, परंतु वो नहीं, वो तो वर्गणा की जो रचना होती है ना उसमें है, परंतु वो ऐसा नहीं कि वो बाद में उदय में आते, ख्याल में आई बात। हाँ वो ऐसा किसी उदाहरण दिया था कि ग्लास में दूध लिया है और नीचे शक्कर है तो मिला ही नहीं है, ऊपर ऊपर फीका है पी लिया तो नीचे वो ज़्यादा मीठा है, ऐसा नहीं है, ये मैं बताना चाहती हूँ। इस कारण से सूत्र में स्थिति की अपेक्षा प्रकृत अर्थ की गवेषणा नहीं की गई है। एक स्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थिति में भी प्राप्त होता है और चतुस्थानीय अनुभाग जघन्य स्थिति में भी प्राप्त होता है, यानी एक से लेकर चार तक के अनुभाग सभी में हो गए, सभी स्थान। यह उस प्रकार कथन नहीं करने वाले सूत्रकार का अभिप्राय है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यानी डिफरेंस किसमें होगा, अनुभाग और प्रदेश। अब अनुभाग और प्रदेशों का आलंबन कर स्वस्थान और परस्थान के क्रम से प्रकृत स्थानों के अल्पभूतों का कथन करने के लिए गाथा सूत्र के प्रबंध का अनुसरण करते हैं। अभी जो लता में जो बताइए नीचे की वर्गणा और ऊपर की वर्गणा, उसमें जो अनुभाग अनंत गुणा है और प्रदेश अनंत गुणा हीन है, ये स्वस्थान हुआ। तो यह गाथा सूत्र मान के लता समान स्थान को ग्रहण कर, मान का लता समान का अर्थ क्या है, मान में कौन से देखा था हमने, लता दारू अस्थि और शिला स्तंभ, तो उसकी ये लता में ये बात बता रही हूँ। स्वस्थान अल्पभूतों की परीक्षा करने के लिए आई है, यहाँ तक बात ख्याल में आई, वह कैसे शंका पूछी।
यहाँ पे जो ये चारों कषाय का जो अनुपात बनता है वो समान बनता है कि अलग अलग बन रही है,
उसी की बात चल रही है, उसी की बात चल रही है ना, एक स्थानीय होता है तो वो परस्थान में चलाएगा, अभी तो क्रम से चलो, अभी तो स्वस्थान में लता में जघन्य स्वर्ग जघन्य वर्गणा से ऊपर की वर्गणा कितनी है, अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी है, प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणी ही है। अब इसका समाधान पढ़ेंगे। वह कैसे माने अर्थात मान कषाय में, किस प्रकार के मान कषाय में, तो मान कषाय में हमने चार भेद देखे, तो लता के समान स्थान से युक्त मान कषाय में उपकस्सा वर्गणा उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जहन्नादो हीना च पदे सज्ञे अनुभाग की अपेक्षा तो जघन्य वर्गणा है अर्थात प्रथम स्पर्धक की आदि वर्गणा है उससे विवक्षित, यानी उसकी अपेक्षा अगर लगाएंगे तो उत्कृष्ट वर्गणा प्रदेशों की अपेक्षा हीन होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कितने प्रमाण में हीन होती है ऐसी आशंका होने पर गुणेन नियमा अनंतेन अर्थात नियम से अनंत गुणी हीन होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लता के समान जघन्य वर्गणा से अभोग्यों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र स्पर्धक ऊपर जाकर, देखो क्या कहना चाहते हैं, उतने स्पर्धक होते नहीं कहा,
खाली ये तो लता की बात,
इतने ऊपर जाकर एक प्रदेश गुणानि स्थानांतर उत्पन्न हो, इसका अर्थ है नीचे की वर्गणा में जितने प्रदेश है एक चय घटता है दूसरी वर्गणा में, दो चय घटते तीसरी वर्गणा में, इस तरह से एक एक चय घटते हुए जब वो प्रदेशों की संख्या आधी हो जाएगी तो कहते वहां तक कितने स्पर्धक चले गए बीच में, तो अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत से भाग प्रमाण स्पर्धक तो मात्र एक गुणहानि में है, आधी होती है वहां, अभी वो तो ऐसा आधा 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 होते होते अनंत गुणाहीन होने जा रहा है, तो कितने स्पर्धक हो गए इमेजिन करना, गुणहानियां ही अनंत होती है, एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक। पुनः इसी विधि से आधा आधा होने के लिए इतना चलेगा, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणहीन स्थान जाकर, गुणहीन स्थान जाकर हैं इतनी गुणहानियां जाकर, गुणहीन स्थान का अर्थ क्या है,
गुणहानि
हाँ इतनी गुणहानियां जिसको हम अनंत नाना गुणहानि कहते हैं, उसी की अपनी उत्कृष्ट वर्गणा उत्पन्न होती है, इसका अर्थ ख्याल में आया मयंक भाई, ये वाक्य का अर्थ ख्याल में आया। देखो ये जो हम स्पर्धक रचना बताते हैं नीचे के स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में दो गुना हुआ तीन गुना हुआ तो अनुभाग बढ़ा, परंतु प्रदेश क्रम से हीन होते चले जाए, इसका गोपुच्छ होती ऊपर तक, तो फिर कहीं से जाके आधी हो जाएगी, तो आधी होने के लिए कितने स्पर्धक बीच में चले गए, तो कहते अनंत, और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा चली गई वो बात अलग, प्रति वर्गणा एक एक चय घटा, एक स्पर्धक में ऐसे अनंत वर्गणा, फिर भी उसको आधा होने के लिए अनंत स्पर्धक चले जाएंगे तब जाके आधा हो जाएगा, नहीं चलिए ख्याल में आ रही कुछ बात, तो ऐसे अनंत गुणहानियां जाकर उसकी उत्कृष्ट वर्गणा, यानी उसके उत्कृष्ट वर्गणा तक कितनी गुणहानियां होती है, नाना गुणहानियों का प्रमाण कितना है, तो अनंत है, इस प्रकार होती है ऐसा समझकर उत्कृष्ट वर्गणा जघन्य वर्गणा से प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणी हीन होती है इसमें संदेह नहीं है। अनुभाग की अपेक्षा तो प्रकृत जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा निश्चय से अनंत गुणी है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। शंका, सूत्र द्वारा नहीं उपदिष्ट कही गई यह बात कैसे उपलब्ध होती है, समाधान, नहीं क्योंकि हीना च पदे शब्द इस प्रकार यहाँ आए हुए च शब्द से प्रदेशों की अपेक्षा पूर्वोक्त गुणकार के क्रम से हीन होती है, परंतु अनुभाग की अपेक्षा उसी गुणकार के क्रम से अधिक होती है, इस प्रकार यहाँ सूत्र का अर्थ के साथ संबंध का अवलंबन लिया गया। इसी प्रकार शेष 15 स्थानों की अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट वर्गणाओं को ग्रहण कर स्वस्थान की अपेक्षा सन्निकर्ष करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अभी मान के जघन्य में हमने इतने स्पर्धक देखे, अनंत है, उसमें वर्गणा का प्रमाण बताया, वर्गणाओं में अनुभव का और वर्गणा में प्रदेशों का। जैसे मान के लता भाग में है वैसे मान के दारू भाग में है, वैसा ही मान के अस्थि भाग में है, वैसा ही मान के वो शिला स्तंभ वाले में। ऐसे क्रोध में भी लगाना मान में माया में लोभ में सर्वत्र 16 स्थानों में स्वस्थान का ऐसा ही अल्पभूत्व होगा। यहाँ तक बात ख्याल में आई? विशेषार्थ मान कषाय में 4 प्रकार का अनुभव पाया जाता है, उसमें से लता के समान अनुभाग में प्रदेशों और अनुभाग की अपेक्षा स्वस्थान अल्पभूतों की क्या व्यवस्था है, इसका यहाँ सूत्र गाथा द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मान कषाय के शेष 3 प्रकार के अनुभाग में तथा क्रोध कषाय माया कषाय और लोभ कषाय के प्रत्येक 4-4 प्रकार के अनुभाग में इस प्रकार मिलकर सब मिलाकर 15 प्रकार के अनुभाग में प्रदेशों और अनुभाग की अपेक्षा स्वस्थान अल्पभूतों का कथन करना चाहिए। इतनी बात तो सरल है, सब में ऐसा ही है क्योंकि हरेक में अनंत अनंत स्पर्धक होते, ये बात यानी हमने 4-4 भाग किए हैं तो हरेक में कितने स्पर्धक है, तो अनंत है। तो उसका अर्थ क्या होगा? नीचे से ऊपर अनुभाग घटता चला जाता है, अनंत गुणाहीन हो अधिक हो जाएगा, अनुभाग बढ़ता जाएगा और प्रदेश घटते चले जाएंगे, वो अनंत गुणाहीन हो जाएगा। मैंने उल्टा बोला। अब आगे, अब मान कषाय के 4 स्थानों के परस्थान अल्पभूतों का कथन करने के लिए आगे का गाथा सूत्र आया। ये आपका जो प्रश्न था, थोड़ा हम रुकते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाता है। नहीं, मगर पहले समझे बिना आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, कंफ्यूजन और बढ़ने वाला है।
बता रहे, इसलिए मैंने पूछा कि ये परस्थान सन्निकर्ष है।
वो तो सब जिन्होंने शब्द निकाले हैं तो वो जरूर पूरे का अर्थ बताए, समझ में आती है बात। अब हम सूत्र पहले ऊपर पढ़ेंगे, सूत्र गाथा, गाथा सूत्र जो पूछते हैं, ये गाथा सूत्र ऊपर पढ़ेंगे। नियमालदा समादो दारु समानो अनंत गुणहीनो शेषाकमेन हीना गुणेन नियमानंतेन। इसका अर्थ देखते हैं, लता समान मान से दारु समान मान प्रदेशों की अपेक्षा नियम से अनंत गुणहीन है। शेष मान अर्थात अस्थि समान और शैल समान मान भी क्रम से अर्थात पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे का मान प्रदेशों की अपेक्षा नियम से अनंत गुणाहीन है। अभी आपका क्या प्रश्न था?
प्रतिस्पर्धक को भी परमाणु तो अनंत हो गए ना?
प्रतिस्पर्धक में वर्गणा अनंत
और परमाणु,
एक एक वर्गणा में परमाणु अनंत।
और ये वर्गणा भी कितनी है? एक
एक
लातू
अनंत वर्गणा,
वो भी अनंत कितना बड़ा है,
फिर भी पूरा स्पर्धक एक एक वर्गणा से एक एक विभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए जो वर्गणा है ऊपर कितना ही अंतर खाली रह जाता है, फिर जाके दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाता है।
अंतरा लाते हैं,
एक वर्ग अनेक परमाणु हाँ। हाँ। आप कुछ अलग बात करें। हाँ, एक जीव की परमाणु की नहीं,
हाँ, अनंत जीव के
और अभी वर्तमान के नहीं, जिन्होंने पहले लेके छोड़े हाँ। तभी तो कहते ना इतने ये जीव है वैसे कितनी कितनी बीते और कहीं लूप होल नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, इतना सा यानी भले ही अपने ख्याल में आते आते तकलीफ होती है परंतु कितना सरल इन द सेंस, यानी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। जैसे गणित में दो और दो चार ही होगा, इसमें कोई अन्यत्र नहीं बन सकता। इस तरह इसमें यही बात है बस, इससे अलावा कुछ सत्य नहीं। सिद्धि होती है सर्वज्ञ के ज्ञान की, तो महिमा आती ही है। करना नियोग पढ़े बिना वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ कहते थे हम पहले, उसका एहसास नहीं होता है क्या सर्वज्ञता हो सकती है। कितनी बातें बता रहे हैं ना वो, उन परमाणु में संख्या कितनी है, उनमें अनुभव कितना है, कहाँ कितना है, और उसमें क्या क्या चेंजेस होती रहती है। जब वो श्रेणी पर आरूढ़ होता है तो कितनी कितनी उसमें इतनी बातें बनती है। अभी वो लब्धि सार का चल रहा है ना, वो तो पहले पूर्व स्पर्धक, फिर अपूर्व स्पर्धक, फिर बादर पृष्टि, फिर सूक्ष्म पृष्टि, उसमें कैसी रचना होती है, कितने परमाणु कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या होता है, फिर चकराने लगता है। इस सर्वज्ञ भगवान ने जान कर और ऐसे हमारे आचार्यों की इतनी हम पर कृपा करेंगे, हम कहेंगे उसको कि उन्होंने ये बातें स्वयं जान कर लिख के रखी। वो जानते ना लिखने का क्या है कारण था, जान तो रहे थे, ऐसा उनके भाव रहे आगे कि चलो ये लिख के रखे था। तो कितना कितना आगे आगे के ज्ञानियों ने भी उसको कितना सरल करके, फिर एक तो उसको प्रिजर्व करके रखना एक बड़ी मुश्किल बात थी उस जमाने में। हमें आज प्रिंटेड बुक्स घर में आते हैं तो फिर घर हमारे घर में कहाँ रखना, इसलिए हम उसको घर बाहर कर। पढ़ने की बात तो दूर रही, यानी ये इतना कठिन मार्ग इतना सरलता से उपलब्ध है, ये आज की विशेष समय में तो कहूँ। वही तो इसलिए जो सारे नियम बताए थे ना, कैसे हैंडल करना, क्या करना, कितनी शुचिता पूर्वक इसको करना, अभी भी ऐसा कोई है, सभी ऐसा है, ऐसा करने वाले भी है, इतने पवित्रता पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा भी है। हमें तो उसकी वैल्यू नहीं ना, कहीं भी रखेंगे कैसा भी पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, अभी ये हमने हिंदी अर्थ देखा, यहाँ भी वो सूत्र वाला फ्लावर नहीं बना रहे क्या आजकल, नहीं बनाते हैं क्या, पहले दो तीन सूत्र से नहीं बना रहे, आगे भी नहीं बना रहे, पहले तो बनाते थे ना, गाथा सूत्रों के लिए नहीं बना रहे। अच्छा, गाथा के अर्थों के लिए नहीं बनाया है, और पहले भी बना था एक वाला 157 पर, उसमें तो है, यानी यहाँ भूल रहेगी, भूल गए, हाँ रह गया। आगे के पेज पर भी रह गया लगता है। ये जो सूत्र का जो साइन किया था ना, हाँ उसका कोई इसके अर्थ से मतलब नहीं है कि हमारी नजर पड़ती है ना कहाँ क्या बढ़ रही है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी पिछले गाथा सूत्र से प्रकृत में मान पद की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर केवल गाथा सूत्र में नियमा लदा समानो दारु समानो वगैरह वगैरह, और पद सज्ञेन पद की भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, उसके अनुसार इस प्रकार संबंध करना। नियमा अर्थात निश्चय से, लता समान मान से, दारु समान मान, इसको परस्थान कह रहे। मान का क्रोध के साथ नहीं लगा रहे यहाँ, लता समान मान और दारु समान मान, इनमें कंपैरिजन चल रही। प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा हीन होता है, क्योंकि ये जो हम रचना करते हैं नीचे लता से शुरू करके फिर दारू भाग वाले फिर अस्थि भाग वाले और शैल भाग वाले, तो लता से मान वो अनंत गुना
तीन
किस अपेक्षा प्रदेशों
प्रदेश अनुभाग की अपेक्षा
नहीं प्रदेश उसमें एक चय ही कम होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है ना स्पर्धक सारे सभी स्पर्धक कंटिन्यूअस है तो लता का उत्कृष्ट और दारू का जघन्य उसमें प्रदेशों की अपेक्षा एक चयहीन है हर एक गुनाहनी का अपना चय अलग है वो बात
ये सही डबल हो जाएगा
वो चय हम उसको निकाल सकते हैं जो अनंत वहाँ की जो गुनाहनी चल रही है उसका उतना चय है वो चय निकालने का भी तरीका है ना वहाँ वहाँ का जो वर्गना का प्रमाण है परमाणुओं का उसको दो गुना नीचे बांध देते हैं चय का प्रमाण आ जाता है जैसे निषेक रचना में हम देखते हैं ना निषेक निषेक प्रति एक चय घटता था वहाँ क्या कहते थे हम पहले निषेक को दो गुनहानी से भाग दो पहला निषेक हमने 512 माना दो गुनहानी 16 से भाग दिया था तो 32 चय आया था यहाँ क्या करना है वर्गना में जितने परमाणु है उसको उसके अपनी दो गुनहानी से भाग देना एक गुनहानी अनंत की है दो गुनहानी कितने अनंत है और वो वर्गना के प्रदेशों को उससे भाग देना है तो वर्गना में परमाणु कितने हो गए इमेजिन करें यानी उसके अनंत का थोड़ा एहसास हो जाता है
यह चय का प्रमाण भी अनंत से होगा
यथायुग्य अरे कोई यथायुग्य लगा ले देखो लता समान मान से दारू समान मान प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुना ही होता है इसका प्रकृति में यह भावार्थ है कि लता के समान समस्त प्रदेश पिंड से ये ख्याल में आई ना बात उसकी एक वर्गना की बात नहीं है
सभी
समस्त पूरा ही
समस्त
सभी वर्गनाओं के सभी प्रदेश इकट्ठा ले जाए पूरा हाँ सर्वधन उसका सर्वधन बहुत अच्छा दारू के समान समस्त प्रदेश पिंड अनंत गुणाहीन क्योंकि लता के समान जघन्य वर्गना से दारू के समान जघन्य वर्गना प्रदेश पिंड की अपेक्षा अनंत गुणीहीन होती है क्योंकि वहाँ अनंत स्पर्धक गए हैं ना पहली वर्गना से कंपेरिजन की वो अनंत गुणाहीन है क्योंकि दारू के अपने स्पर्धक अनंत हो गए उसके बाद उसका नंबर आया तो जितने नंबर का स्पर्धक है उसमें वो तो अनुभाग तो बढ़ेगा अनुभाग दो गुना तीन गुना चार गुना
अनंत गुना हुआ
परंतु प्रदेश हर समय कम क्योंकि नाना गुणानियां यहीं पर चली गई है ना नाना गुणानियां लता समान में ही हो गई है तो लता का ही अंत जो वर्गना है वही अनंत गुणाहीन है तो मान के पहले वर्गना अनंत गुणाहीन रहने ही है न्याय ख्याल में आता है ना लता के पहले से लता की अंतिम अनंत गुणाहीन प्रदेशों की तो उसकी जस्ट ऊपर की भी अनंत गुणाहीन
नहीं होगी
जघन्य वर्गना से जघन्य तथा लता के समान दूसरी वर्गना से अभी हरेक वर्गना से हरेक वर्गना कंपेयर करो तो लता के समान दूसरी वर्गना है यहाँ की दारू के समान दूसरी वर्गना अनंत गुणहीन है इस प्रकार इस विधि से जाकर लता के समान उत्कृष्ट वर्गना से दारू के समान उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणहीन होती है देखो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ समझा है हम इसको गुणहानी का उदाहरण लेके समझेंगे हम जब निषेक रचना या जो जहाँ कहीं पर चय से घटता प्रमाण होता है वहाँ क्या होता है हम पहली गुणहानि के निषेक की अपेक्षा हम इसको समझाएंगे दृष्टांत को. गुणहानि हमने आठ की मान ली, पहला में 512 है, दूसरे में 32 कम ऐसे विधि से जाके 256 से तो दूसरी शुरू होती है, उसके पहले कितना होगा उससे 32 अधिक चांदन 8 तो 70. ये बात ख्याल में के बराबर नहीं
नहीं बराबर है
बराबर. तो यहाँ क्या कहते हैं, ये 512 से 256 हुआ. पहली गुणहानि का पहला निषेक 512 का है, दूसरे गुणहानि का पहला निषेक 256 का है, यहाँ का दूसरा निषेक
ये 288 हो जाएगी ना, 32 का डिफरेंस.
32 288 बहुत अच्छा 288 अभी याद आए मुझे ना ख्याल है. 512 में से 32 गए, 480 बराबर है. तो यहाँ का दूसरा निषेक यहाँ की चय भी आधा है, यहाँ तो 16 ही कम करना,
16 का चय है 240,
यहाँ का 240 और यहाँ का 480. यहाँ का तीसरा लेना, हरेक के साथ हरेक कंपेयर करना तो आधा है, क्योंकि एक गुणा नहीं है दूसरी गुणा है. अभी वहाँ अनंत स्पर्धक बीच में चले गए, तो अनंत अभी स्पर्धकों में कैसा लेना, अभी हम गुणहानि की बात छोड़ते स्पर्धकों में लेना है. ये तो हमने निषेक की अपेक्षा देखा, स्पर्धकों की अपेक्षा बात करें. पहला स्पर्धक और उसकी पहली वर्गणा, दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, इसमें अनुभाग दो गुना होता है, अनुभाग तीन गुना होता है अनुभाग से, परंतु इसमें प्रदेशों का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. प्रदेश कम है परंतु आधे नहीं हुए. आधे कब हो गए, अनंत स्पर्धक जाने के बाद जब एक गुणहानि हो गई उसकी भी गुणहानि लेना है. स्पर्धकों में भी गुणहानियां होती है, उसको अनुभाग की गुणहानि कहेंगे. कर्मों में जब गुणहानि शब्द आता है ना, तो स्थिति की गुणहानि अलग और अनुभाग की गुणहानि अलग. स्थिति की गुणहानि तो असंख्यात में होगी, पल्ले का असंख्यात वाला, और अनुभाग की गुणहानि तो अनंत में होती है, क्योंकि अनंत स्पर्धक जाने के बाद वो आधे होते हैं.
प्रदेश तो
चय से कम होते चाहिए जाएंगे, परंतु यानी उसका इस अनुभाग कैसे बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धक दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह गुना आठ गुना इस तरह. अब यहाँ उसकी गुणहानि समाप्त हुई, गुणहानि तभी कहते प्रदेश गुणहानि कहते, प्रदेशों का आधा होना. अनुभाग तो वहाँ यथायोग्य बढ़ा ही है, अनुभाग अनंत गुना हो गया है वहाँ पर, तो प्रदेश पहली बार आधे हुए. अब इतने जाने के बाद यहाँ पहले एक गुणहानि में क्या हुआ, यहाँ का पहले से यहाँ आधा, दूसरे से ये आधा, तीसरे से वो तीसरा आधा, चौथे से चौथा आधा, एक गुणहानि के बाद. अनंत गुणहानि जाने के बाद क्या होगा,
अनंत गुणहीन हो गया.
अनंत गुणहीन है ना, प्रत्येक वर्गणा से वहाँ की प्रत्येक वर्गणा अनंत गुणहीन. इसी का अर्थ क्या है, इस सबकी टोटल से उसकी सबकी टोटल अनंत गुणहीन. लता के एक एक वर्गणा के साथ दारू की एक एक वर्गणा अनंत गुणहीन है.
और आगे इसे देखा ना कि एक स्पर्धक में भी, अरे एक स्पर्धक हाँ एक गुणा में भी स्पर्धक अव्यवय से अनंत गुणा और सिद्धों से अनंत में बात करना
बताए ना उन्हें.
तो ये बहुत मुश्किल
सब मुश्किल में मुश्किल बातें करते आए हैं, इसको बांधते आए हैं मनारी से, उसको जानने का कार्य मुश्किल लगता है. कर ही नहीं सकते हम, वो तो बहुत आसान लगता है करने,
आसानी से करते हैं
मानते हैं करते हैं. ये ख्याल में नहीं इसका कि इसके गुणहानि अनंत बीच यही बीच में इमीडिएटली एक से दूसरी गुणहानि होती तो आधा आधा हर एक का कहते हैं. हमने आपको शायद याद होगा अभी हमने जो गुणहानि की बात की ना नीचे को में, सबसे नीचे के ग्रैंड टोटल 3200 है, तो दूसरे गुणहानि की ज्ञान टोटल 16 है, 1600 है ये 3200, ये 1600, फिर 800, 400, 200, 100 प्रत्येक गुणहानि. वहाँ तो पांच गुणहानियाँ गई तो उतनी मात्रा में उसकी उतनी बार उसके आधार
चाहिए और
तो यहाँ तो अनंत गुणानी आ गई थी, तो पूरी ग्रैंड टोटल भी अनंत वा भाग प्रमाण होगी, इसको अनंत गुणाहीन कहते हैं। आगे बढ़ने इस प्रकार होने की व्यवस्था है, इसलिए लता के समान समस्त प्रदेश पिंड से, दारू के समान समस्त प्रदेश पिंड अनंत गुणाहीन है, यह सिद्ध हुआ। किंतु वहां के स्पर्धकों के बहुतपने का अवलंबन लेकर प्रकृति विषय का विपर्यास करना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानों में अपनी अपनी आदि वर्गणा के प्रमाण से डेढ़ गुणहानि मात्र होने पर वहां स्पर्धक रूप गुणकार में प्रकृति विषय के विपर्यास करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा मानेगा कि वहां स्पर्धक ज्यादा होते हैं, तो कहते स्पर्धकों की संख्या यानी सब उसका टोटल ये कितना होता है, द्रव्य कितना होता है, टोटल द्रव्य कितना होता है, तो आदि वर्गणा को, पहली वर्गणा को
डेढ़ गुणा,
उसके अपने डेढ़ गुणाने से गुणा करो। निशे का फॉर्मूला यहाँ लगाना, वो 512 हमने निशेक दे गया था, देखा था निशेक में स्थिति की रचना में, पहले निशेक 512 को डेढ़ गुणाने से गुणा करते 12 से, तो टोटल हमको सर्वधन यानी टोटल कर्मों के परमाणु की संख्या आती है वहाँ पर स्थिति में। अनुभाग में कैसा लगाना, पहली वर्गणा को यहाँ की डेढ़ गुणाणी कितनी अनंतों की है उससे गुणा करना, तो यहाँ के प्रदेश पिंड पूरा आ जाए। विपर्यस यानी ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना, विपर्यस करना यानी विरुद्ध प्ररूपणा करना, विपर्यास करना कहते ना विपरीतता। हम कहते ना ये अर्थ का विपर्यास मत करो, यानी उसमें से कुछ गलत अपना अर्थ मत निकालो। हाँ, यानी स्पर्धक कितने थोड़े ज्यादा कम हुए उसके कारण प्रदेश पिंड में रचना बदलने वाली नहीं है, यहाँ से वो अनंत गुणाहीन ही है, क्योंकि इसके पहली वर्गणा से उसकी पहली वर्गणा अनंत गुणाहीन है। गुणहानि तो सर्वत्र समान ही है, ऐसा नहीं कि लता की गुणहानि का आयाम अलग नहीं होता, गुणहानि का आयाम तो सर्वत्र वही है,
समान ही है।
तो डेढ़ गुणहानि से वहां भी गुणित करेंगे, डेढ़ गुणहानि से यहाँ भी गुणित करेंगे, तो अनंत गुणाहीन प्रदेश पिंड आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे लता के समान प्रदेश पिंड से दारू के समान प्रदेश पिंड अनंत गुणाहीन है, इसी प्रकार दारू के समान समस्त प्रदेश पिंड से अस्थि के समान समस्त प्रदेश पिंड अनंत गुणाहीन है, तथा उससे भी उससे यानी अस्थि के समान समस्त प्रदेश पिंड से शैल के समान समस्त प्रदेश पिंड अनंत गुणाहीन है। इस प्रकार इस अर्थ विशेष के कथन करने के लिए गाथा के उत्तरार्ध का निर्देश किया है, क्योंकि शेषा कमेन हीना गुणेन नियमा अनंतेन, इन्हें प्रदेशों के क्रम हीन गुण से हीन क्रम से
अनुभाग
की अपेक्षा अनंत, ऐसा कहने पर शेष अनुभाग स्थानों के क्रम से प्रदेश समूह की अपेक्षा अनंत गुणे हीन पने की सिद्धि पूर्वोक्त न्याय के अनुसार निर्बाध बन जाती है। ये तो सरल है ना, के समझ में कठिनाई। पहले हमने लता में जघन्य से उत्कृष्ट की बात,
अनंत गुणा,
फिर टोटल लता के टोटल मान के साथ कंपेयर किया,
लता के दारू के साथ,
सॉरी लता का मान के, लता का मान के दारू के साथ,
अनंत गुणा हीन
उसी के अस्थि के साथ, उसी के
शैल के साथ।
अब आगे की सूत्र गाथा सूत्र पढ़ेंगे, 77 नंबर दिया यहाँ पर। नियमालदा समादो
अनुभागेन वद्गणमेक,
फिर से नियमालदा समादो
अनुभागेन वद्गणमेक, स्वेच्छा कमेन हिया गुणेन नियमानं तेन।
लता के समान मान से शेष स्थानीय मान अनुभाग समूह की अपेक्षा और वर्गणा समूह की अपेक्षा क्रमशः नियम से अनंत गुणित अधिक होते हैं। अब कंपेयर किसके चल रही है?
लता के साथ दूसरे
लता
तीन
के समान मान है।
लता मान के लता किससे?
मान सॉरी लता के समान मान का अर्थ है मान के लता भाग। मान का जो लता भाग है
उससे तीन तीन
शेष स्थानीय मान ने
तीनों
दारू अस्थि और शैल मिलकर सबके
हाँ।
क्या ना फिर पढ़ती हूँ इसका। लता के समान मान से यानी इसको एक बाजू हटाया अकेले लता की बात कंपेयर करेंगे शेष स्थानीय मान
दारू
तीनों मिलकर
दारू अस्थि और शैल
दारू अस्थि शैल अनुभाग समूह की अपेक्षा टोटल उसका अनुभाग समूह और वर्गणा समूह की अपेक्षा नंबर ऑफ वर्गणाएं यहाँ प्रदेश की बात नहीं ले रहे हैं नंबर ऑफ वर्गणा ले रहे क्रमशः नियम से अनंत गुणित अधिक होते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे एक एक से घटता है परंतु पूरा पूरा प्रदेश समूह प्रदेश समूह पूरा हाँ नहीं नहीं अभी शेष सब अभी हम क्रम पढ़ेंगे ना इसको हाँ स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। देखो इस सूत्र द्वारा लता के समान अनुभाग स्थान से शेष स्थानों का अनुभाग क्रम से अनंत गुणा कहा गया। क्रम की बात है यथा नियम अर्थात निश्चय से लता समादो अर्थात लता के समान संज्ञा वाले मान के अनुभाग स्थान से शेषार्थात दारू आदि के समान अनुभाग स्थान कमेन यानी यथाक्रम अधिक होते हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध करना चाहिए किसकी अपेक्षा वे उससे अधिक होते हैं ऐसा पूछने पर अनुभागज्ञेन वगणज्ञेन यह कहा। यहाँ पर अग्र शब्द समुदाय रूप अर्थ का वाचक है अज्ञेन है न। तदनुसार अनुभाग समूह का नाम अनुभागाग्र है। और वर्गणा समूह का नाम वर्गणाग्र हुआ है। कभी कभी अग्र शब्द अंत के लिए भी आता है अग्र अग्र पृष्ठ अग्र वर्गणा ऐसा परंतु यहाँ समुदाय रूप सबका लिया है वाचक अथवा अनुभाग का ही नाम अनुभागाग्र है और वर्गणाओं का नाम ही वर्गणाग्र है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तदनुसार लता के समान मान के समस्त विभाग प्रतिच्छेद पिंड से दारू के समान सब अविभाग प्रतिच्छेद पिंड अधिक है। इसी प्रकार लता के समान सब वर्गणा समूह से भी दारू के समान सब वर्गणा समूह अधिक है। इसी प्रकार अस्थि और शैल समान अनुभाग स्थानों और वर्गणा समूहों के विषय में भी कथन करना चाहिए। सबको मिलकर नहीं लेना है एक एक को लेना क्रम से इससे वो अधिक उससे वो अधिक। देखो आप कहेंगे पहले तो बता दिया अनुभाग अनंत गुणा होता है वहाँ पर ऐसा तो पहले बताया था ना वहाँ क्या लिखा था कि केवल प्रदेश समूह बताए थे
प्रदेश अनंत गुणाहीन होते और अनुभाग अनंत गुणा होता है
किससे किसमें
लता से दारू से दारू से शैल से।
देखो पहले कहा था उसमें क्या लिखा था प्रदेशों की अपेक्षा नियम से अनंत गुणा हीन होता है और
अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा होता है।
छिहत्तर और सतहत्तर, पहले तो प्रदेश पिंड बताए और यहाँ कहते हैं अभी अनुभाग, अनुभाग की बात है ना, उसकी बात यहाँ चल रही है। सतहत्तर में अनुभाग की चर्चा की, पहले हमने प्रदेश पिंड देखा था जिसको हम जैसे देखा था ना, गुणानी गुणानी में आधा आधा होता है, तो डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे तो अनंत गुणाहीन होगा। अब वे अनुभाग स्थान मिला, कहाँ पढ़ रही हूँ मैं, नीचे से पांचवी लाइन, वे अनुभाग स्थान कितनी मात्रा में अधिक है, क्या गुणकार रूप से अधिक है या विशेष रूप से अधिक है, ऐसी आशंका होने पर गुणेन यह वचन कहा है, इससे विशेष अधिक है इसका निषेध जानना चाहिए। फिर वहां क्या वे संख्यात गुणे अधिक है क्या असंख्यात गुणे अधिक है क्या अनंत गुणे अधिक है, ऐसी आशंका होने पर निराकरण करने के लिए नियमा निश्चय से ये यथाक्रम अनंत गुणे अधिक है यह कहा गया।
अनुभाग में तो समझ में आया, वर्गणा में कैसे ये अनंत गुणे हो जाएंगे, वर्गणा क्या परमाणुओं के समान अनुभाग वाले परमाणु कम होते जाते हैं उसके लिए
वर्गणा में भी मेरे ख्याल से अविभाग प्रतिच्छेद समझना चाहिए,
वर्गणा नहीं लेना है ना, अविभाग प्रतिच्छेद ही लेना है,
वर्गणा में प्रदेश पिंड नहीं लेना है,
नहीं वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या लेते हैं
ना,
एक एक वर्गणा समान नंबर अनुभाग वाले वर्गण अनुभाग वाले प्रदेश
समान अनुभाग वाले, पर वर्गणा किसको कहते हैं ये भी हम वर्गणा में हम प्रदेश भी देख सकते हैं और अनुभाग भी देख सकते हैं। मान लेते एक एक वर्ग में 100-100 अनुभाग है और ऐसे 10 वर्गणे 10 परमाणु का समूह है तो उस वर्गणा का अनुभाग कितना होगा,
नहीं 10 अनुभाग वाले
100-100 अनुभाग वाले 10 परमाणु है
हाँ, तो अनुभाग भी 100 ही होगा,
1000 होगा,
क्योंकि हमने देखा था कि जो
हमने कुछ नहीं देखा था वहाँ तो हमने क्या कहा था, पहली वर्गणा का अनुभाग का अर्थ है वहाँ पहली वर्गणा का दर एक वर्ग का अनुभाग अपेक्षा सहित कथन होता है उसमें भी, जब हम कहा था ना लता के पहली वर्गणा से वहाँ का अनुभाग जो है अनंत गुणा हो गया ऐसा जब कहा था तो ग्रैंड टोटल देंगे तो होगा ही होगा, परंतु उसके एक एक वर्ग का एग्जैक्ट अनंत गुणा हुआ था, परंतु जो वर्गणा का टोटल अनुभाग कहते हैं।
अच्छा यहाँ पे वर्गणा का टोटल अनुभाग, वर्गणा समूह बताया
अभी उसके हम पढ़ेंगे ना, उसमें क्या कहना चाहते हैं, यानी ये दोनों ही अपेक्षा मैं मेरी ओर से बता रही हूँ, यहाँ क्या कहना चाहते वो हम आगे पढ़ेंगे ना, मैंने पढ़ा है आपको ने पढ़ा होगा तो मुझे
नहीं, 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 नहीं। तो ये पूछा,
परंतु ये बात ऐसी आती है क्योंकि ऊपर ऊपर प्रदेश कम होते चले जाएंगे हाँ। और अनुभाग एक एक से बढ़ता चला जाएगा हाँ। तो विशिष्ट किसी भी वर्गणा का अगर हम टोटल अनुभाग लेना है तो दो अपेक्षाओं से कथन आता है वहाँ पर, वहाँ एग्जैक्ट परमाणुओं को गिनकर वहाँ का अनुभाग गिनेंगे हम
टोटल अनुभाग,
जैसे पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा है और दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा है
प्रदेश,
तो अनुभाग कितना बड़ा, दो गुना हुआ,
दो गुना प्रदेश आधे हो गए,
था वह अनुभाग दो एक हुआ
हाँ। और प्रदेश आधे हो गए,
तो टोटल वर्गणा का अनुभाग एग्जैक्ट डबल हुआ कि नहीं हुआ, प्रदेश आधे नहीं हुए हो, प्रदेश आधे अनंत स्पर्धक जाने के बाद हो गए, थोड़े कम हुए, कितने चय घटे, पहले स्पर्धक में जितनी वर्गणा है उतने चय घटे, तो ये अनुभाग एग्जैक्ट डबल होने पर भी प्रदेश डबल नहीं हुए हैं तो दो गुना से थोड़ा कम होगा पूरे वर्गणा का अनुभाग, तो दो गुना से कम होगा उसको साधिक भी कह सकते हैं हम
हाँ।
ये जैसे अपेक्षा अभी अनंत में वैसे यहाँ जो कहना चाहते वो तो अलग है, परंतु जब वर्गणा में कहते हैं हम तो वर्गणा में एक वर्ग का अनुभाग कितना है उसकी भी चर्चा करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वर्ग जितने हैं
उसके
उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कितना अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसको भी वर्गणा कह सकते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं अभी हम पढ़ कर देखेंगे। ऐसा कथन पूर्व में भी आया है, जब कभी हमने संदृष्टि में भी उसको वह वगैरह ऐसा नाम देके देखा था। ये भूल गए वो बात छोड़ दो, अब यहाँ देखेंगे क्या कहते हैं। यहाँ पर सूत्र में दो बार नियम शब्द के उच्चारण का क्या फल है, समाधान कहते हैं, लता समान स्थान से शेष दारु आदि के अनुभाग समूह और वर्गणा समूह इन दोनों की अपेक्षा यथाक्रम अधिक होते हैं। इस बात का उदाहरण करना प्रथम नियम शब्द के देने का फल है और दूसरे भी नियम शब्द का वे स्थान अनंत गुणे ही है, विशेष अधिक नहीं है और न संख्यात गुणे या असंख्यात गुणे अधिक है, इस बात का निश्चय करना फल है। ये अधिक भी बराबर आए क्या, अभी भी लग रहा है, अधिक शब्द है ना नीचे, असंख्यात गुणे अधिक है इस बात का निश्चय करना फल है। इस प्रकार पिछले दो सूत्रों में और आगे के समानांतर सूत्र में, आगे भी आएगा शब्द नियम, नियम शब्द के उच्चारण की सफलता का व्याख्यान करना चाहिए। यानी ऐसा ही है अन्यथा नहीं, यह उसका जानने का फल है। नियम शब्द जानने का फल यही है। यहाँ पर पूरे कथन का यह तात्पर्य अभी वो बताएंगे तब हम समझेंगे। लता के समान जघन्य वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से, दारु के समान जघन्य वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं, लता के समान दूसरी वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से, दारु के समान दूसरी वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। इस प्रकार लता के समान उत्कृष्ट वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से, दारु के समान उत्कृष्ट वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं, इस स्थान के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ तो प्रत्येक वर्ग का अनुभाग लिया होना है, उसी को वर्गणा का अनुभाग कहा है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभाग की व्यवस्था के अनुसार यह क्रम निश्चित होता है कि लता के समान समस्त अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेदों से, दारू के समान समस्त अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे। वह हमने प्रदेशों की कंपैरिजन की थी, एक वर्गणा में जितने प्रदेश है उस एक एक वर्गणा से वहाँ की एक एक वर्गणा अनंत गुणा हीन
हीन होती है,
यहाँ के अविभाग प्रतिच्छेदों से वहाँ का अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणा होगा, तो टोटल भी अनंत गुणे हो जाएगी। इसलिए अनुभाग का भी समूह लिया, पहले हमने प्रदेशों का समूह लिया था, वर्गणा की बात अभी भी नहीं की उन्होंने, अब देखेंगे हम। इसी प्रकार दारु के समान अनुभाग से अस्थि के समान अनुभाग अनंत गुणा है, उससे भी शैल के समान अनुभाग अनंत गुणा है, परंतु वर्गणाओं की अपेक्षा कथन करने पर लता के समान अविभाग प्रतिच्छेदों के उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ी हुई सब वर्गणाओं के आयाम से आयाम में उसके वर्गणाओं की संख्या लेना। देखो फिर पढ़ती हूँ, लता के समान अविभाग प्रतिच्छेदों के उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ी हुई सब वर्गणाओं के आयाम से, दारु के समान अविभाग प्रतिच्छेदों के उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ा हुआ सब वर्गणाओं का आयाम अनंत गुणा है। लंबाई लंबाई नंबर ऑफ वर्गणाएं, यहाँ वर्गणाओं का अविभाग प्रतिच्छेद उनको इष्ट नहीं है, वर्गणाओं की संख्या वो बताना चाहते। पहले ये क्या था ना, ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना कि वहाँ स्पर्धक ज्यादा है वर्गणा ज्यादा है इसलिए वहाँ, ये निकालो पेज नंबर 161
विपर्यास।
हाँ वहाँ कहा था 160 का लास्ट वाक्य, कि वहाँ के स्पर्धकों के बहुत पने का अवलंबन लेकर प्रकृत विषय का विपर्यास करना युक्त नहीं है। वहाँ कहते वहाँ के परमाणु कितने अनंत गुणे हीन है, प्रदेशों की संख्या
पर वर्गणा है,
परंतु स्पर्धक ज्यादा है तभी तो वर्गणा ज्यादा होगी ना। ऐसा नहीं कि एक एक स्पर्धक में वर्गणा ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ वर्गणाए वहाँ ज्यादा है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक वहाँ ज्यादा है। पर स्पर्धक ज्यादा है इसलिए प्रदेश ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो प्रदेश तो अनंत गुणे हीन होते हैं, ये बात बताना चाहिए। देखो यहाँ फिर पढ़ते, यहाँ वर्गणा का आयाम का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ वर्गणाएं। फिर शुरू से पढ़ू, लता के समान अविभाग प्रतिच्छेदों के उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ी हुई सब वर्गणाओं के आयाम से, ये सब छोड़ दो, यानी लता के वर्गणाओं के आयाम से, दारू के वर्गणाओं का आयाम कितना है, तो अनंत गुणा है। अभी स्पर्धकों की संख्या छोड़कर हरेक स्पर्धकों की वर्गणाओं को गिनेंगे एक साथ, मान लेते यहाँ 10 स्पर्धक थे और हरेक में 10-10 वर्गणाएं थी, तो यहाँ 10 × 10 कितने हुए थे, 100 हुए थे वर्गणाएं टोटल लता में, और वहाँ स्पर्धक भी ज्यादा होगी उसकी वर्गणा भी ज्यादा होगी।
तो नजीक दिन जो अंतराल है लता में वो कम है, और अरे
उसकी बात नहीं ली है, टोटल नंबर ऑफ वर्गणाओं को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे आप?
नहीं वो तो एक्सेप्ट हो गया है, पर मैं दूसरी तरह सोच रहा हूँ।
दूसरी तरह मत सोचो, अभी ऐसी सोचो, पहले जो विषय उसको पक्का करो, नहीं तो कंफ्यूजन इतना बढ़ेगा उसको। अभी उस अंतराल की बात सोचो, नंबर ऑफ वर्गणा इतना ग्रहण करना, यहाँ तो उन्होंने स्पर्धक को भी नहीं लिया बीच में, पहले उसके वहाँ स्पर्धक ज्यादा हो गए इसलिए ये वाक्य आया था, इसलिए मैंने वो बीच में स्पर्धक की बात डाली, क्योंकि जो विषय उसको सरलता से समझ से जाएंगे तो वो स्वयं आचार्य समझाने वाले आगे। देखो ये ख्याल में है ना, जो लता के वर्गणाओं का आयाम है
उससे
दारू के वर्गणाओं का आयाम
बहुत अनंत गुणा है,
अनंत गुणा है, इतनी बात ख्याल में, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं अनंत गुणी
है।
उससे अस्थि के समान अनुभाग संबंधी सब वर्गणाओं का आयाम अनंत गुणा है, तथा उससे शैल के समान अनुभाग संबंधी सब वर्गणाओं का आयाम अनंत गुणा है। ये संबंधी अनुभाग संबंधी वगैरह बात, यानी लता वाली वर्गणाओं से दारू वाली वर्गणाएं अनंत
गुणी,
अनंत गुणी है, उससे अस्थि वाली अनंत गुणी है,
अनंत गुणी,
और उससे शैल वाली अनंत। यहाँ पर सर्वत्र अविभाग प्रतिच्छेदों का गुणकार, जब अनंत गुणा कह रहे हैं ना, सब जीवों से अनंत गुणा है, और वर्गणाओं का गुणकार जब कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद टोटल अनुभाग समूह कहा था, वो कितना अनंत है, उस अनंत का प्रमाण क्या है, तो सब जीवों का अनंत गुणा, और वर्गणाओं का गुणकार अभोग्यों से अनंत गुणा, और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण। अब लता के समान अंतिम संधि से दारू के समान प्रथम संधि अनुभाग समूह और प्रदेश समूह की अपेक्षा कैसे होती है, यानी जो लता के समान अंतिम संधि से दारू के समान प्रथम संधि अनुभाग समूह और प्रदेश समूह की अपेक्षा कैसी होती है, तथा इसी प्रकार शेष संधियां कैसी होती है, इस प्रकार इस तरह की आशंका का निराकरण करने के लिए आगे का गाथा सूत्र आया है।
यह संधि मीन्स कंपैरिजन,
कंपैरिजन नहीं, अभी आपने प्रश्न पूछा था ना लता के अंतिम और दारू का प्रथम,
हाँ।
उसमें क्या रिलेशन होगा, क्या लता के अंतिम से दारू का प्रथम जो वर्गणा है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणा हो जाएगी? एक से दूसरे में गए ना, वो लता से दारू में प्रवेश किया तो लता के अंतिम वर्गणा और दारू की पहली वर्गणा, उसमें अनुभाग की अपेक्षा क्या होगा और प्रदेश समूह की अपेक्षा क्या उसका क्या रिलेशन होगा वहाँ? एक संधि, जैसे दिन की संधि कैसे कहते हैं, रात गई और सुबह आई तो वो संधि काल, दोपहर में एक संधि काल, रात शाम को एक संधि काल कहते हैं, वैसे यहाँ संधि। ऊपर पहले सूत्र पढ़ेंगे कि यहाँ यामी फ्लावर रही है, संधि दो संधि पुण अहिया नियमा च होई अनुभागे, तीना च पदे सज्ञे दो नियमा विशेषेण। उत्तरोत्तर अंतिम संधि से आगे की प्रथम संधि अनुभाग की अपेक्षा तो नियम से विशेष अधिक होती है, और प्रदेशों की अपेक्षा नियम से विशेष हीन होती है। मेरे ख्याल से संधि यानी लता मान वाला ज्वाइंट, और लता
और दारू,
दारू वाला और दारू अस्थि वाला। नहीं नहीं, मैंने लता से मान इसकी बात की थी, दारू इसकी बात।
हाँ, लता के अंतिम से दारू का प्रथम यही लिया है ना।
हाँ, वो एक संधि हुई।
हाँ, और
वो इसी ऊपर दारू से
अस्थि की, अस्थि
वो संधि,
और अस्थि से सेल
की, से सेल की एक संधि। तो उत्तरोत्तर अंतिम संधि से आगे की प्रथम संधि अनुभाग की अपेक्षा तो नियम से विशेष अधिक होती है, और प्रदेशों की अपेक्षा नियम से विशेष हीन होती है। इस प्रकार सर्वत्र दोनों संधियों में जानना चाहिए। लता के समान अंतिम वर्गणा ग करना है, और दारू के समान प्रथम वर्गणा, ये दोनों भी संधि कहलाती है। इसी प्रकार शेष संधियों का भी अर्थ कहना चाहिए। इसलिए विवक्षित अंतिम संधि से विवक्षित प्रथम संधि अनुभाग की अपेक्षा नियम से अधिक होती है, और प्रदेशों की अपेक्षा हीन होती है। ऐसी होती हुई भी दोनों ही संधियां अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा क्रमशः नियम से अनंतवे भाग अधिक, यानी अनुभाग कितना है, अनंतवा भाग अधिक, और अनंतवे भाग हीन, कौन, प्रदेश,
प्रदेश,
क्योंकि वहां भी चय घटा ना वहां पर होती है। इस प्रकार यहाँ सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। शंकर, प्रकृत में विशेषण ऐसा सामान्य निर्देश होने से संख्यात भाग और असंख्यात भाग के परिहार द्वारा अनंतवा भाग ही ग्रहण किया जाता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? अन्य क्यों नहीं है? दो गुना होगा तो हम कहेंगे संख्यात गुना, नहीं तो संख्यात भाग अधिक हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक हो सकता है, समाधान नहीं, क्योंकि व्याख्यान से उस प्रकार के विशेष का ज्ञान होता है। इस प्रकार सर्वप्रथम मान कषाय की संधियों के चारों स्थानों का अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकार से अल्पभूतों द्वारा सन्निकर्ष करके अब स्थान संज्ञा रूप से निर्णित स्वरूप उन्हीं चारों स्थानों की घाती संज्ञा द्वारा देश घातीपने और सर्वघातीपने का अनुसंधान करने के लिए आगे का गाथा सूत्र आया है। अभी क्या बताया उन्होंने, अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा उन्होंने बता दिया, संधि दोनों को ही संधि कहला ना, तो नीचे की संधि ऊपर की संधि, यानी दारू के अंतिम से ऊपर अस्थि का
अनंत वाला,
और दारू के यानी अस्थि के लास्ट वाला और
शैल
का पहला। अभी आगे का गाथा सूत्र देखेंगे। पहले तो उन्होंने, हमने कौन सी अपेक्षा लगाई थी, अनुभाग और प्रदेश का कथन किया था। अब यहाँ घाती संज्ञा कहेंगे, वो देश घाती के सर्वघाती। सौवावरणीयं पुण उक्तस्सम होइ दारु असमाने एकादेशावरणम्
सौवावरणम चौवरिल्लम।
दारू के समान मान के प्रारंभ के एक भाग अनुभाग को छोड़कर, दारू समान मान में प्रारंभ के एक भाग अनुभाग को छोड़कर शेष सब अनंत बहुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय है। आपको याद होगा जब हम पहले धाति कर्मों की बात करते हैं ना, यहाँ तो मान को यही नाम दिए
दारू का संख्या,
फिर लता, फिर दारू, रस्सी और शैल। उसमें शैल, अस्थि और दारू का अनंत बहुभाग, ये सर्वघाती है। दारू का एक भाग और लता वाले देशघाती। सर्वघाती को यहाँ सर्वावरणीय कहा,
सर्वावरण।
और देशघाती को देशावरण कहते हैं। ये नीचे की ओर से बता रहे हैं। देखो फिर से, दारू के समान मान में, यानी लता वाले तो देशावरणीय है ही है, उसकी तो बात नहीं है। तो दारू के समान मान में प्रारंभ के एक भाग अनुभाग को छोड़कर, प्रारंभ में नीचे का अनंत भाग छोड़कर शेष सब अनंत बहुभाग। तो पहला एक भाग यानी अनंत वा एक भाग, यानी अनंत से भाग कर, भाग देकर एक भाग, इसको कहेंगे अनंत वा भाग। शेष सब अनंत बहुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय। ख्याल में आती बात, उसके पूर्व का लता समान अनुभाग और दारू का अनंतवे भाग अनुभाग देशावरण है, तथा दारू समान अनुभाग से आगे का सब अनुभाग सर्वावरण है। यानी अस्थि और शय तो सभी सर्वावरण है ही है, दारू में ही दो भेद पड़ते हैं। अनंत बहुभाग है वो सर्वावरण है, अनंतवा भाग है वो देशावरण। अभी सूत्र का अवलंबन लेकर मान कषाय के लता समान आदि स्थानों की घाती संज्ञा का अनुगम करेंगे, यानी वो टर्मिनोलॉजी लगाकर हम बात करेंगे, अनुगम करेंगे ना, भी उसकी अपेक्षा से यहाँ कथन करेंगे। यथा सर्वावरणीयम पुनः अर्थात सर्वावरणीय ही है, वह सर्वावरणीय कौन है ऐसा पूछने पर वो कस्सम दारू समाने अर्थात दारू के समान मान में जो उत्कृष्ट अनुभाग स्थान है वह नियम से सर्वघाती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, केवल दारू के समान मान में उत्कृष्ट अनुभाग ही सर्वघाती नहीं है, किंतु दारू के समान मान के सबसे प्रारंभ के, प्रारंभ के यानी नीचे के अनंतवे भाग प्रमाण अनुभाग को छोड़कर शेष अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग सर्वघाती है, यही सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा प्रकृत में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सूत्र में आए हुए पुनः शब्द की समुच्चय रूप अर्थ में प्रवृत्ति का अवलंबन लिया गया है, अथवा दारू के समान मान में उत्कृष्ट सर्वावरण ऐसा कहने पर दारू के समान मान का अनंत बहुभाग, अनंत बहुभाग अनुभाग सर्वावरण है, यह अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अनंत बहुभाग अनुभाग के उत्कृष्टपने की सिद्धि होने में विरोध का अभाव है, इसलिए दारू के समान मान का अनंत बहुभाग अनुभाग सर्वघाती है यह सिद्ध हुआ। वही बात उन्होंने अनुभाग शब्द लगा सकती है। हेठा देशावरणम इस वचन से दारू के समान मान का अधस्तन अर्थात सबसे प्रारंभ का अनंतवा भाग अनुभाग और लता के समान अनुभाग सब देशघाती है ऐसा प्रकृत में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें सर्वघाती पने रूप शक्ति का अभाव है। सव्वा वर्णम च वरिल्लम, इस वचन से भी दारू के समान अनुभाग से आगे का अस्थि के समान और शरीर के समान सब अनुभाग नियम से सर्वघाती है ऐसा ज्ञान कराया गया है, क्योंकि यह दोनों प्रकार का अनुभाग तीव्र और तीव्रतर भाव से अवस्थित है, इसलिए उसके वैसा होने में कोई विरोध नहीं आता। ये बात ख्याल में आई? ये तो पहले आप सर्वघाती देशघाती बहुत बार पढ़ चुके थे ना, पंचलब्धि पुस्तक में भी बात की थी, अपने अनुभाग के प्रकरण में भी हुई थी बात इसकी। ये घाती संज्ञा वगैरह ये टर्मिनोलॉजी भी हमने इसी जयधौला में पढ़ी थी, अनुभाग विभक्ति की बात आई थी ना, सर्वावरणीय शब्द नया डाला, परंतु उसी को सर्वघाती देशघाती संज्ञा बताई, और स्थान संज्ञा और घाती संज्ञा ऐसे दो उसमें टर्मिनोलॉजी, यानी देशघाती सर्वघाती ये घाती संज्ञा, और ऊपर लिखा ना घाती संज्ञा का अनुगम करेंगे, पहली लाइन में लिखा था। तो ये अनुभाग को बताने के लिए या तो घाती संज्ञा यूज करेंगे या स्थान संज्ञा यूज करेंगे। स्थान संज्ञा से वो एक स्थानीय, द्विस्थानीय, तीसस्थानीय, चतुस्थानीय कहेंगे, और घाती संज्ञा से वो सर्वघाती के देशघाती उसकी चर्चा है। अब आगे की गाथा सूत्र देखेंगे, यहाँ कहीं भी वो गाथा सूत्र के लिए सूत्र का चिन्ह नहीं बनाएंगे। पहले गाथा, एसो कमोच माणे माया एनियम साध लोभे भी सवं चकोह कम्मम चतुसुधाने सुबोधवम। जो यह क्रम पिछली सूत्र गाथाओं में कह आए हैं, वह सब मान माया लोभ तथा क्रोध संबंधी चारों स्थानों में निर्वशेष रूप से नियम से जानना चाहिए। जो यह क्रम अनंतर पूर्व ही माणे लदा समाणे इत्यादि गाथा सूत्र से लेकर सव्वावरणियम पुनहित गाथा पर्यंत की गाथा सूत्रों में मान कषाय को अधिकृत कर कहे आए हैं, वही सब क्रम माया कषाय में भी चारों स्थानों में क्रम से योजित कर लेना चाहिए। केवल माया में ही नहीं, किंतु नियमसा अर्थात निश्चय से लोभ कषाय में भी कहना चाहिए। केवल लोभ कषाय और माया कषाय में ही यह क्रम नहीं है, किंतु जो समस्त क्रोध कर्म नगर समान और पृथ्वी समान आदि भेदों में विभक्त चार स्थानों में स्थित है, उसे भी इसी क्रम से जाना जान लेना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार वो उसे चारों कषायों में से प्रत्येक कषाय के चार भेदों में विभक्त स्थानों में प्रकृत कथन करके अब गति आदि मार्गनाओं में बंध और सत्व आदि की अपेक्षा विशेषता को प्राप्त हुए स्थानों की गवेषणा करने के लिए आगे के गाथा सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमने तो जब पहले सीखा था तो सभी घाती कर्मों को मिलकर नाम दिया था स्पर्धकों को, लता, दारू, अस्थि और क्षय। यहाँ तो वे नाम मात्र मान में लगाए, मान में, क्रोध में क्या नाम लगाए थे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर,
बालुका,
जल रेखा, धूली रेखा, बालुका बरोबर, यानी वहाँ उसमें क्या जल राजी, बालुका राजी,
पृथ्वी राजी,
नगर राजी, ये शब्द आए थे ना, या नगर सदृश सभी शब्द का है, राजू सदृश, हाँ राजू सदृश। तो जैसे अभी हम लता वाले कहा, तो यहाँ क्या कहना क्रोध के बारे में, वहाँ मान के बारे में लता समान कहा, तो जब क्रोध की बात आई तो जल राजी समान कहे,
बालुका राजी समान,
तो जल राजी समान घाती संख्या लगाओगे, जल राजी समान जो क्रोध है वो घाती संज्ञा की अपेक्षा कैसा है,
देशघाती, बालुका राजी वो देश,
बालुका राजी में
देशघाती सर्वघाती,
हाँ वो अनंत वहा भाग वो क्या है, देशघाती,
अनंत बहुपाल सर्वघाती सर्वभरणीय,
और ऊपर के पृथ्वी राजी और
सर्वभरणीय
नगर राजी वाले
सर्वघाती
सर्वघाती, और माया में माया में देशघाती कौन है? बोलो बोलो
अवलेखनी अवलेखनी देश राज मैंने लिख के रखा है, अवलेखनी और गौमूत्र गौमूत्र
उदक वाली बात जल वाली है।
माया में अवलेखनी और गौमूत्र
देख देख के बता रहे
मैंने लिखा है चार सब लिख के मेरे याद नहीं मैं आगे नहीं देखता मैंने लिखा है इससे
अवलेखनी और
गौमूत्र
तो गौमूत्र के फिर
अनंत बाप आगे वो देश गाती है बाकी सर्व गाती है और मेट के सिंह और
बास
की मेट के सिंह और बास की जन।
अब लोग में
हरिदा वस्त्र और पाशुलेप पाशुलेप
पाशुलेप तनुमल हमने कहा
नहीं अक्षमल और कृमिराग वो सर्व गाती है। अक्षमल
नहीं 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 तीसरे नंबर का
तीसरे नंबर का लोभ में
तनुमल के लिए क्या लिखा
लोभ में
अक्षमल
उसके बाद
कृमिराग
उल्टा नहीं मैं नीचे का
अच्छा पाशुले
वही पूछ रहे
पाशुले
लेप लेप
पाशुले
लेप लिखा था पाशुले पाशुले
हरिद्र वस्त्र और पाशुले और अक्षमल और कृमिराग
तो ये सब हो गए हर एक के हमने सर्वघाती और देशघाती देखी है पंशु पाशु नहीं पंशु
हाँ पंशु पग के ऊपर बिंदी है
बिंदी है देखो आगे का सूत्र पढ़ेंगे गाथा ए देशिम थाणाणम कदमम थाणम गदीय कदमिष्ये बद्धम च बज्जमानम उवसंतम वा उदिन्नम वा इन पूर्वोक्त चारों स्थानों में से किस गति में कौन स्थान बद्ध है कौन स्थान बद्धमान है कौन स्थान उपशांत है और कौन स्थान उदीर्ण है ये तो प्रश्नात्मक गाथा है। अनंतर पूर्व कहे गए इन 16 स्थानों की आदेश प्ररूपणा करने पर ये तो ओग से बात हो गई किस गति में कौन स्थान है क्या विशेषता बिना सब गतियों में सब स्थान संभव है या कोई विशेषता है यह इस गाथा सूत्र का सूत्र द्वारा पूछा गया बंध सत्व उदय और उपशम भाव से विशेषता को प्राप्त हुए इन स्थानों में से प्रत्येक स्थान का गतियों में अनुगम करना चाहिए इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह वचन कहा गया है बद्धं च बज्जमानं इत्यादि बद्धं च अर्थात निवृत्त बंध होकर बद्धं यानी बंधा हुआ
बंद
हो गया अभी दूसरे समय से इसको क्या कहेंगे सत्व का द्रव्य यानी निवृत्त बंध होकर बंध के बाद द्वितीयादि समयों में सत्व कर्म रूप से अवस्थित कौन स्थान किस गति में होता है बद्धम च यानी जो बंध चुका है उसके बाद होकर अभी बंध हो गया इसी प्रकार बज्जमानम अर्थात तत्काल बंध रूप परिणाम से विशेषता को प्राप्त होकर यानी उस समय बंधने वाला जो नवक बंध रूप से अवस्थित कौन स्थान किस गति में होता है यानी बंध वहां कौन सा है एक तो सत्व और एक बंध अभी नया बंधने वाला पूर्व में बांध के आया है उस गति में आया है तो वो पूर्व गति से बांध कर आया उसकी बात नहीं नया कौन सा बन सकता है और सत्ता में कौन सा प्राप्त हो सकता है ये उसकी बात इसी प्रकार वसंतम वा इस वचन से यहाँ पर अनुदय लक्षण रूप उपशम એ શ્રેણી વાળા ઉપશમ નહીં,
અપ્રશસ્ત ઉપશમ,
અનુદય નહીં હોના ઉસકો અનુદય કહે છે, એ ઉપશમ કહે છે. દેખો અનુદય લક્ષણ રૂપ ઉપશમ વિવક્ષિત હૈ, इसलिए अनुदय स्वरूप होकर उपशांत भाव से स्थित कौन स्थान किस गति में होता है, तथा इसी प्रकार उदिन्नम वा सूत्र के इस वचन द्वारा भी उदय अवस्था से विशेषता को प्राप्त होकर कौन स्थान किस गति में होता है, इस प्रकार पुच्छा निर्देश किया है. इसलिए यह सब पुच्छा सूत्र ही है. इस पृच्छा का विशेष निर्णय आगे के अंतिम गाथा सूत्र से संबंध से करेंगे. ये तो बात हम कल करेंगे, इसका उत्तर कल देंगे. जावानी
के ज्ञान ते शूरे लोकालो सोवानी मस्तक नमो
सदा देता हूँ.